आयत नंबर 11 से 22, 11 to 22, टॉपिक लिखिएगा जल्दबाजी, स्लैश डाल के लिखिए, यानी जल्दबाजी क्या है? तारीकी से गुजरे बगैर रोशनी तलब करना। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपको मुझे सुबह चाहिए ना, तो अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते, वो कहते हैं कोई नाकामी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, बस हमें खैर मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। यही तारीख से सीखता है इंसान, यही कायनात से सीखता है। और इसका एक दूसरा टॉपिक भी लिख लीजिए, दुनिया नकद और आखरत उधार। और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग फिर इसके लिए तैयार नहीं होते। वयद उल इंसान बिशर दुआ अहू बिल खैर वकान अल इंसान अजूला। और इंसान बुराई की दुआएं मांगते लगता है, बिल्कुल इसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह। और इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। ये कहना कि अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता, ये जल्दबाजी है। कभी ना ये कहा करें। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अल्लाह तो सिर्फ चंद नेक लोग, जिनको हम नेक समझते हैं, ये भी कोई नहीं पता कि असल में वो नेक हैं भी कि नहीं। हमारे गुमान में वो नेक है, बस अल्लाह इनकी बहुत सुनेगा। तो ये गलत फहमी है, इसको दूर कीजिए। हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियाँ बनाया है। रात की निशानी को तो हमने बेनूर कर दिया और दिन की निशानी को रोशन बना दिया, ताकि तुम लोग अपने रब का फजल तलाश कर सको, और इसलिए भी कि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम कर सको। और हर चीज़ को हमने खूब तफसील से बयान फरमा दिया। असल बात क्या है कि वकुल इंसान अल्ज़मना हुतायरहू फ़ी उनुक़िख, और हर इंसान की बुराई भलाई को इसके गले में लगा दिया। सोचिए ज़रा, अपने अपने गले में देखे कुछ पहनना हुआ है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, कोई लॉकेट, कोई चेन, कोई हार, और कुछ तो मंगलसूत्र भी पहनते हैं, और कुछ और डोरियों में काले काले धागों में बांध के भी कुछ पहनते हैं, और सोचते हैं कि ये काला तावीज़ मुझे बचा लेगा। तोड़ के फेंक दीजिए, अल्लाह आपको उस धागे के हवाले कर देगा। हदीस है, मैं अपने पास से नहीं कह रही। फरमाया जिसने तमीमा लटकाया, अल्लाह कहता है फरिश्तों जाओ इसको कहो इस धागे से अपने काम करवा ले, मैं नहीं करूँगा। धागा क्या कर सकता धागे से? तो वो डॉक्टर अच्छा है जो आपके बच्चे को तो सही तरह डिलीवर कर देगी। कल मुझे एक डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हर दूसरी औरत तकरीबन, यानी कहने की बात है, ऑफकोर्स हर एक ऐसा नहीं होगा, कि जो डिलीवरी के लिए आती है उसकी पेट पे काले रंग का धागा बंधा होता है। और कहती हमारे ऑपरेशन थिएटर में धागों के गुच्छे हो जाते हैं लटक लटक के, क्योंकि काटने पड़ते हैं। क्या देगा आपको धागा? ज़रा सा अकल से तो सोचें, धागे की बजाय बंदा वहाँ कुछ और चीज़ लटका ले तो शायद कोई फ़ायदा हो। धागे को तो आपने खुद ही काटना है, ये शिर्क है, ये सिर्फ ना समझी में होता है। वो मालिक कहिए हस्बी अल्लाह, वो काफ़ी है मुझे। तो रियाजा, हर इंसान की भलाई बुराई को अल्लाह ने उसके गले में लगा दिया। वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और हम इसको क़यामत के दिन इसके नामे अमाल की सूरत में निकालेंगे, जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पाएगा, और कहा जाएगा इकरा किताबक, ले खुद ही अपनी किताब पढ़ ले। ज़रा इमेजिन कीजिए, रिज़ल्ट कार्ड में फेल हैं आप, और कहा जाए इधर आइए स्टेज पे खड़े हों और इस माइक में अपना रिज़ल्ट अनाउंस करें, और लोगों को बताएं कि मैं बहुत ही बुरे नंबरों से फ़ेल हो गई हूँ, मैंने तो कोई एक नंबर भी नहीं सही लिया, और मैं तो किसी एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं, मेरी तौहीद में मैं फ़ेल, मेरी सुन्नत में मैं फ़ेल, अपनी नमाज़ों में मैं फ़ेल हूँ, हकूक़ुल इबाद में मैं फ़ेल हूँ। सोचिए ज़रा कितनी शर्म आएगी। अपने हाथ से तो इंजेक्शन लगाना भी मुश्किल होता है, कोई लगा दे तो लग जाता है। क्या ही वो वक्त होगा जिस वक्त बंदे को कहा जाएगा कफ़ा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज के दिन तो अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफ़ी है। दुनिया में दूसरों के लेते थे हिसाब, बोला मुनाफिक है, बोला खोटा है अंदर से, वो कोई और है, वो उसका कोई और थीम है, वो कोई और उसका मोटिव, वो किसी का एजेंडा। कितना मज़े मज़े से हुक्मरानों से लेकर उलमाए दीन से, दीन के खादिमों से भी हमारा मामला बदगुमानियों का होता है। फैमिली और ख़ानदान तो है ही बना इसलिए कि हमारे गुनाह माफ़ हों, उसके बारे में बदगुमान हो होकर। ज़रा सा सोचिए, क़्यामत के दिन इसी तरह का एक बड़ा सा पंडाल होगा जैसा ये हॉल है, और इसी तरह का स्टेज होगा, तसव्वुर में ले आइए, और एक एक ने खड़े होकर आकर सब के सामने अपने रिज़ल्ट कार्ड शो करने हैं, ये देखो मेरा हाल। ज़रा सोचिए तो सही, अगर उस नामे अमाल में ये लिखा होता, ये वीकेंड पे क्या कर रही थी, ये हॉस्टल में क्या हो रहा था, ये अम्मी अबू को बताए बगैर कहाँ चली गई थी, ये स्क्रीन पे क्या देख रही थी तुम कि शौहर को आता देखो बदल गई? और ये क्या था तुम्हारे फ़ोन में? ये किसका नंबर था छुपा रहा था? ये तुमने पासवर्ड क्यों लगाया हुआ था? ये इतने छुपा छुपा कर अपनी चीज़ों को क्यों रखते थे? पसीने आ जाएंगे। हम में से हर एक किताब लिख रहा है, और ये हमारी किताब ज़िंदगी है। किताब ज़िंदगी में क्या लिखा? इस एक आयत पे मैंने शायद बीसियों बार दर्श दिए हुए हैं, आज से कोई 15-20 साल पहले से शुरू करके। इतनी खूबसूरत ये आयत है, इंसान के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। और यहाँ ये भी बता दिया कि किस्मत सितारों और चिड़ियों के उड़ाने में नहीं है, ये आमाल नामों के साथ लिखी हुई है। आपके मेरे आमाल की खूबी मेरे लिए बरकत है, और आपके मेरे आमाल की खामी मेरे लिए मनहूस है। शगुन नहीं लेना, यहाँ से ये भी सीखिए, बदशगुनी नहीं लेनी। फुलां बहू आई तो बदशगुनी ले, इसके आते ये हो गया, ये गाड़ी खरीदी तो बस ये हो गया, और ये बच्चा मनहूस है। नहीं, कोई मनहूस नहीं होता, एक ही चीज़ दुनिया में सिर्फ मनहूस है, और वो बंदे के बुरे आमाल है। और इसी की फिर पकड़ में बंदा बाज़ दफ़ा दुनिया में आता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमारे आमाल नामे हमारे साथ चिपके हुए हैं। मन इख्तदा फ़इन्नमा यख्तदी लिनफ्से, और जो कोई राह रास्त हासिल कर ले वो खुद अपने ही भले के लिए राह रास्त याफ्ता होता है। अगर आप और मैं यहाँ आकर बैठे हैं, थोड़ी सी एफर्ट तो की है ना, तो फ़ायदा आपको ही हो रहा है, मुझे ही हो रहा है। किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे इधर आने से अगर मुझे खुद को ना हो। और जो भटक जाए इसका बोझ इसी के ऊपर है। आप ना आए इधर क्योंकि आज रात को किसी की इफ्तारी बनानी है, शौक से बैठिए घर में। आपको उस इफ्तारी का अजर नहीं होगा जिसके लिए आपने नमाज छोड़ दी, क्योंकि आज मैंने शाहकार दिखाना है अपनी कुकिंग का, और मैंने 50 लोगों को खाना खिलाना है, वाह वाह होगी। तो क्या है, नमाज तो रोज़ ही पढ़ते हैं, इफ्तारी तो कभी कभी करते कराते हैं। नहीं, फरमाया जो भटक जाए इसका बोझ इसके अपने ऊपर है। कोई बोझ वाला किसी और का बोझ अपने ऊपर न ला देगा। और हमारी सुन्नत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब कर दें। और जब हम किसी बस्ती की हलाकत का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के खुशहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वो इस बस्ती में खुली नाफरमानी करने लगते हैं, तो इन पर अजाब की बात साबित हो जाती है। फिर हम इसे तबाह बर्बाद कर देते हैं। हमने नूह के बाद भी बहुत सी कौमें हलाक कीं, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार और खूब देखने भालने वाला है। यानी दूसरों को नहीं भी पता चलेगा तो तुम्हारे रब को तो एक एक बात पता है। तो समझ लो कि मन का नुरीदुलाजिला तजलना लहूफ़ी हामा नशा। बड़ी प्यारी आयतें हैं, इस पर ज़रा सी तवज्जो कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। आज बहुत सारों का यही मसला है कि दुनिया नज़र आती है इसलिए उसके पीछे रो रहे हैं, उसी के गम, उसी के हम, उसी की ख्वाहिशें, उसी के वसवसे। और आखिरत जो ना ख़त्म होने वाली है वो छुप गई है। ये दुनिया जितनी करीब होती है ना, ये आखिरत उतनी दूर हो जाती है। लोग कहते हैं जहाँ मिठा तो किन्ने डिठा, जावांगे तो देखांगे, जो सब नल होसी और साढ़े नल भी होसी, वो तो होसी तो फिर लग पता जाएगा, देखा जाएगा। लोग कहते देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, आज देख लो, आज वक्त है। कोई मरता है हम कहते हैं हाय आंखें बंद हो गई, नहीं, आंखें खुलती हैं। आंखें आज मेरी आपकी बंद है, वल्लाही अगर आज मेरी आपकी आंखें खुली होती तो हमारी तरजीहात ये ना होती जो आज है। इतनी दुनिया के अगली पूरी ज़िंदगी ना कमाएं तो भी भूखे ना मरें, और आखिरत अभी भी रिस्क पे है। अल्लाह ताला आपकी मेरी इस्लाह फरमा दे। मन का न युरीदुलाजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद, जिसका इरादा सिर्फ़ इस जल्दी वाली दुनिया यानी फौरी फ़ायदे का ही हो, इसे हम यहाँ जिस कदर जिसके लिए चाहें सरे दस्त दे देते हैं। यानी जो सिर्फ दुनिया मांगता है ना, अल्लाह उसको दुनिया भी सारी नहीं देता, उतनी उसको देता है जिसको अल्लाह ही चाहता है। लेकिन बिलाखिर इसके लिए हम जहन्नम मुकर्रर कर देते हैं, जहाँ वह बुरे हालों में थुतकारा हुआ दाखिल होगा। और जिसका इरादा आखरत का हो, दुआ करें हम इसमें शामिल हो जाएं। अल्लाह हमारे इरादे आखरत के बना दे, हमारा जीना मरना आखरत के लिए हो जाए, आखरत ओरिएंटेड दुनिया हमें मिल जाए। आपकी मेरी एक एक हरकत, आपका मेरा एक एक अमल मेरी आखरत पे असर डालेगा। भाग लीजिए, नेकियां कर लीजिए, जितनी करनी है आखरत में दिखेंगी, और गुनाहों में भाग लीजिए वो भी दिखेगी। कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा आखरत में, हदीस है, जिसने दुनिया बनाई उसकी कुछ ना कुछ आखरत ज़रूर छूटेगी, और अपोज़िट भी है। और हम उस आखरत को रिस्क पे डालकर इस दुनिया का रिस्क लेने से बच जाते हैं। आज ख़त्म हो दुनिया से जाएं, जो लिया सब डिग्रियां हाथ में पड़ी रहेंगी, जायदादों के ऊपर झगड़े पड़ चुके होंगे, सगे भाई बहन लड़ लड़ मरेंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, लोग सोचेंगे ये बहनें बाप को याद करके रो रही हैं, पता चला वो भाइयों के विरसा ना देने पर रो रही हैं। और क्या बोलो, ये दुनिया मेरी आपकी, हर दिन सुबह होती है और शाम होती है, और हम इस दुनिया के पीछे अनटूट भाग दौड़ का शिकार होते हैं। ये दुनिया ही है जिसने आपको मुझे कुरान पढ़ने के दौरान भी कई चीज़ों में उलझाया हुआ है। इस दुनिया को दूर कीजिए, दनुव दूर कीजिए, अदना है ये। जितना दुनिया दूर होगी आप उतना नेचुरली हर चीज़ को सही तरह से समझेंगे, वरना तो बंदा अंधाधुंध भागता है इन्हीं चीज़ों के पीछे। और अल्लाह ताला ने हम सब को इख्तियार देकर मुश्किल में डाला, आजमाइश है मेरी आपकी। जैसे बेनियाजी का अंदाज़ आपको इनायतों में दिख रहा है, फ़कीर आता है ना तो कहता है रोटी दे दे, चावल दे दे, आप कहते पकड़ बाबा जा जा माफ़ कर, ऐसे थुत थुत थुत, दुनिया मांगने लेकर अल्लाह कहते दे दो फरिश्तों दो दो, मुझे नहीं परवाह इसकी। और जब कोई हराम से मांगे तो अल्लाह सबसे पहले देता है, जाओ इसको मेरे से दूर कर दो, मुझे इसे घिन आती है। और जो बेचारा आखरत मांगता है अल्लाह उसको दुनिया भी दे देता है। अल्लाह हमें दुनिया भी दे आखरत भी दे। याद रखिए, दुनिया से अल्लाह ने नहीं रोका। अगर आखरत आपको मुझे अल्लाह ने देनी है ना, तो दुनिया भी अल्लाह ने दी हुई है, कौन दे सकता है? ये दुपट्टा आपको किसने दिया? ये फ़ोन किसने दिया? ये कुर्सी मेज किसने दी? अल्लाह ने दी, बंदों के असबाब में छुपा कर देता है। तो जब दुनिया इतनी प्यारी उसने दे दी तो आखरत क्यों नहीं देगा? अपनी दुनिया को देख देख कर खुश हुआ करें, अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह आदत हो गई अच्छी चीज़ों की, अब वहाँ हमें बुरी ना देना। जहाँ हम आराम के आदि हो गए वहाँ बेआराम ना करना, और अल्लाह हमें दुनिया आखरत दोनों में जो मिले उसको पाकर अल्लाह के करीब कर दे। अब ज़रा सुनिए कि आखरत का सिर्फ इरादा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि दुनिया सिर्फ इरादा है, आखरत के इसमें थोड़ा सा इजाफा है। वमन अराद अल आखिरत वसालह सायह वहुव मोमिनुन फौलाइका कान सायहुम मशकूरा। तीन शर्तें हैं आखरत पाने की, क्या? और जिसका इरादा आखरत का हो और जैसी कोशिश इसके लिए होनी चाहिए वो करता भी हो। इस पे गौर कीजिए। देखिए, आप कहते कोशिश कर तो रहे हैं आखरत के लिए, पर उतनी नहीं कर रहे जितनी करनी थी। बस अब खाना पकाएं, चूल्हे पे रखें, हंडिया गरम हो, आप उसमें सब्ज़ी गोश्त दाल जो पकाने रखे डालें, चूल्हा खोल दें, खूब एक जोश आ गया, आपने अपने ज़ोम में कहा मैंने हंडिया चढ़ा दी, फिर चूल्हा बंद कर दें, क्या वो दाल गल चुकी होगी? आप कहते हैं इस दाल को उतनी देर गलाओ जितना इसके गलने का हक है, इस सालन को पकाओ, इसका शोरबा सुखाओ ताकि इसका कोई जायका आए। बीच पकी हुई अधूरी हंडिया में से एक लुकमा चख के तो देखिए, थूक देंगे। बस अपने ऊपर लीजिए, मैं भी लेती हूँ, कोशिशें तो हैं मेरी आखरत के लिए, अधूरी तो नहीं है, आधी तो नहीं है, शुरू तो बड़े जोश से करती हूँ, बीच में तो नहीं लटका देती। याद रखिए, आखिरी कदम जब तक जन्नत के अंदर नहीं पहुंच जाएगा मैं और आप बच नहीं सकते। मौत की हिचकी तक अगर एहतिना सिरातल मुस्तकीम कहकर इस पे चलने की कोशिशें, और उतनी कोशिशें जितना कोशिशें करने का हुक्म है, और साथ ही साथ ईमान की शर्त, अगर शिर्क बेदत आ गया, इरादे कुछ और हो गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तीन काम कर लीजिए, बस यही लोग हैं जिनकी कोशिश की अल्लाह के हाँ पूरी कदरदानी की जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसी कोशिशें करने वाला बना दे कि जिसके बाद अल्लाह ताला हमारी कदरदानी कर ले। और इसके अलावा कुल्लन उमिद्दुहा उलाई वहा उलाई मिनताई रब्बिक, और हर एक को हम वहम पहुँचाए देते हैं, इन्हें भी और उन्हें भी, यानी दुनिया वाले को भी हम ही दे रहे हैं और आखरत मांगने वाले को भी हम ही दे रहे हैं। तेरे परवरदिगार के इनामात में से तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं, देख ले कि इनमें हर एक को एक पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखरत तो दर्जों में और भी बढ़कर और फजीलत के एतबार से बहुत बड़ी है। जैसे दुनिया में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं ना, आप भी मानते हैं? अगर सब एक जैसे होते तो तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? कभी बाज़ दफ़ा छोटे छोटे काम करते हुए लोगों को देखे, आपके गटर साफ़ करते हैं, सड़कें साफ़ करते हैं, आपके लिए कुर्सियाँ बिछाते हैं, कभी सोचा करें कि जब दुनिया में ये है तो आखरत में नहीं होगा? आखरत में भी होगा। आप क्या चाहते हैं? दुनिया में जैसे अल्लाह ने आपको मालिक बना दिया, कोई आपका मुलाजिम है, آپ اور میں آخرت میں مالک بننا چاہتے ہیں کہ ملازم، اونر بننا چاہتے ہیں کہ ٹیننٹ، اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں کہ کرائے کا گھر لینا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہے، تو ظاہر ہے جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی ملے گا، پلے میں جو ہوتا ہے اتنے کی شاپنگ کر کے آتے ہیں ہم، یا تو کوئی آپ کو شاید ادھار دے دے کہ چلے ہم آپ کو جانتے ہیں، وہاں جا کر کوئی نہیں دے گا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کا نسخہ آگے آ رہا ہے، لا تجعل مع اللہ الہاً آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا۔ کی پوائنٹ جنت میں جانے کا، ایک اللہ کو مانو، ظاہری باطنی ڈھکے چھپے ہر شرک سے خود کو بچا لو۔ یہاں بات ہوئی نام اعمال کے گردن میں ڈالنے کی اور منحوسیت کی، بعض لوگ کسی ایک دوسرے کو اپنی ناکامیوں کی وجہ جانتے ہیں، تو حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم میں آتا ہے، بیماری کا متعدی ہونا، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے، فال کوئی چیز نہیں، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے، ہر دن کے عمل پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب مومن بیمار پڑتا ہے، سوچئے گا اس کو سن کر بہت آپ خوش ہوں گے، اگر آپ واقعی باقاعدگی سے کوئی نیکی کرتے ہیں اور کسی دن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکیں، مومن بیمار پڑتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تو نے فلاں کو تو روک لیا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، اس کے جو عمل تھے وہ برابر لکھتے جاؤ، یہاں تک کہ میں اسے تندرست کر دوں یا فوت کر دوں۔ آپ یہاں روز آ رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، کسی حقیقی عذر، یہ نہیں کہ نزلہ، زکام، کھانسی، سر درد، یہ کوئی عذر نہیں ہے، صحابہ کو کبھی نزلہ زکام کھانسی نہیں روکتا تھا اللہ کے کاموں سے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا عذر آ جائے، گھر بیٹھے آپ یہاں بیٹھنے کا اجر پائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے یہاں اپنے قدردان ہونے کی بات کی، سعیہم مشکورہ، تو اللہ کے ہاں قدردانی کے لیے تین چیزیں نوٹ کیجئے گا، اللہ کس چیز کی قدر کرتا ہے؟ نمبر ایک، ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے آخرت طلب کرنا۔ دوسرا، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، مراد سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی کی نیکیاں کر کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور تیسری چیز، ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل توجہ نہیں، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اور کیا سیکھا ان آیات سے؟ پہلی بات، اپنے رب کا فضل تلاش کرنا ہے، ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، لہٰذا میں نے اپنے اعمال کی ذمہ داری لینی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اس لیے برائی سے بچنا ہے۔ ایک گروہ کو اپنے اعمال کی وجہ سے دوسرے پر فضیلت دی گئی، میں نے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی، اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میری دعائیں خیر والی یا شر والی کیسی ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں 23 سے 30، بہت ہی پیارا رکوع ہے، اس کا ٹاپک لکھیے، اختیار میں امتحان ہے۔ آپ کو مجھے اللہ نے ول پاور دے دی اور پھر کہا دیکھو کرتے کیا ہو، اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی۔ اور اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی اس کے ٹاپک کے ساتھ لکھ لیجئے، تورات کے احکام اشرا کا قرآنی بیان، یعنی یہ آیتیں جو آپ میں پڑھنے لگے نا، یہ تورات میں 10 کمانڈمنٹس کے نام پر موجود تھی، اور ان کو بدیہات امہ کہتے ہیں، ہر امت کے اندر یہ باتیں موجود تھیں، بیسکس آف ایوری ریلیجن۔ کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں سے اگر آپ ترتیب دیکھیں گے نا، تو آپ کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بڑا خوبصورت مجموعہ دکھے گا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اوف نہ کہنا، یہ ہے آپ کا میرا رشتہ اس دفعہ کا، اوف۔ آپ دیکھیں، آپ نوٹ کیجئے گا، اوف اوف، تمہارے اوف سے ان کے دلوں کے چراغ بجھ جائیں گے۔ بڑھاپے میں ماں باپ کا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اولاد جب خوب بولتی ہے، وہی ماں باپ جنہوں نے اس کو بولنا سکھایا ہوتا ہے، جب وہ ماں باپ کے آگے آ کر بدتمیزی سے بولتے ہیں، یل کرتے چیختے اور آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تو ماں باپ کا دل بجھ جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اف سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس سے بھی روکتا. اور آپ دیکھیے الف فا عربی میں اکثر لفظ تین حرفی ہوتے ہیں, ثلاثی سہ حرفی, اس میں صرف دو لفظ ہیں الف اور فا اف. اور کسی بھی ناگواری کے احساس پہ نیچرلی جو منہ سے نکل جاتا ہے نا وہ اف, اف بڑی گرمی, اف بہت مرچیں, اف. ماں باپ کے حقوق کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے, یہ حقوق کی باتیں نہیں آج کروں گی. جہاں محبت کی بات ہے, جذبات کی بات ہے, ایموشنز کی بات ہے, اف نہیں کرنا, نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا. جوان ماں باپ ہوں اور بچہ چھوٹا ہو نا, تو کبھی کبھی بچپن میں بھی بچے بدتمیزی کرتے ہیں, دو چار سال کے اسکول جاتے ماں پہ چیخیں گے, ماں باپ کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھوکا ہے, یہ اسکول سے تھکا ہوا آیا ہے, اس کو نیند آئی ہے. بٹ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور آپ جوان ہو جائیں, اور آج کا پورا پارت جوان اولاد اور ماں باپ کا تعلق ہے, اس میں بیبیز کا ذکر نہیں آ رہا. جب آپ جوان ہوں اور آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, پھر آپ کی ڈانٹ ان کو پتھروں سے بھی بھاری لگتی ہے, کیونکہ آگے سے بول نہیں سکتے. آپ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھا کریں اور اس سے اپنی انٹینسٹی چیک کریں کہ میری ٹون کیا ہے, میری پچ کیا ہے. ڈانٹنا ڈپٹنا تو بڑی دور کی بات ہے, ان کے ساتھ کھردرے لہجے میں بات کرتے ہوئے بھی دیکھا کریں تو ایک دم بے بسی کے آنسو ان کی آنکھوں میں آ جائیں گے. بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا, پہلا جذباتی تعلق بات اور چیت کا. آگے چلیے پھر اکٹھا بات کریں گے. اب بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے, یہ حقوق نہیں ہے, یہ آداب ہے. یہ ماں باپ کو اپنے لیے دنیا کا سب سے قیمتی اور سب سے معزز شخص سمجھنا ہے. پیچھے سورہ یوسف میں پڑھ کے آئے, رفع ابویہا, اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھا دیا. تبھی تو عزت ملتی ہے, تبھی تو عاجزی ملتی ہے. تو اب پہلے بولنے کا طریقہ لکھ لیں, نمبر 1, 2, 3, تو آپ کو انشاءاللہ باتیں کلیئر ہوتی رہیں گی. پہلی چیز, ماں باپ سے بولنا کیسے ہے. اب دیکھیے ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہاں تک. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا. کر کے دکھاؤں نا اگر آپ کو, تو بازوؤں کو جھکا کر بالکل, اگر آپ اپنے آپ کو نیچے بٹھا کر تشہد میں بٹھائیں نا, نظریں جھکی ہوئی, ہاتھ ایسے شولڈرز, ایسے گھٹنوں پہ, اور یہ نہیں, ایسے اکڑ نہیں, ریزنمنٹ نہیں, کوئی بڑائی نہیں, ایسے جھکے ہوئے بیٹھو جیسے پرندہ اڑنے سے پہلے پر سکیڑتا ہے نا. ماں باپ کے آگے ایسے بیٹھو جیسے پر سکیڑے ہوئے, تبھی تو اڑو گے. جو اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے آگے توازو سے سکیڑتے نہیں ہیں وہ اڑ نہیں سکتا. اور ایک بات لکھ لیں, ایک جم بنا لیجئے, ابھی سے اس کو چھوڑ دیں. ماں باپ کو دکھی کر کے, رلا کر, پریشان کر کے سب کچھ مل سکتا ہے آپ کو دنیا میں. عزت مل سکتی, شہرت مل سکتا, سٹیٹس مل سکتا, آپ کے فالوورز بن سکتے, لیکن جنت نہیں مل سکتی. جنت کی قیمت, ماں باپ کو خوش کرو, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ, اپنے ماں باپ کی تربیت نہیں کرو, ان کا خیال رکھو. اور تیسرا کام, اب کیا کرو, بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا, منہ پہ کیا ہو, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار, ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. یہ تین حق, تین جذباتی تعلق ہے. اللہ نے یہاں ماں باپ کا لفظ بول کر آپ کو مجھے جذباتی کر دیا. اور اگر جذباتی تعلق محسوس نہیں کریں گے تو آپ ان کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے. اس کے برعکس اگر آج کا دور دیکھیے, ہم آپ کے اسی شہر میں ایک کالج ہے, تو ان کے پرنسپل کے ساتھ میٹنگ تھی اور کچھ بھی جو بات ہوئی, تو جو بات ان کی میرے دل کو لگ گئی, انہوں نے کہا کہ آج جو بچوں کو سکھانے والا سبق ہے وہ ادب ہے. بچے ادب نہیں کرتے, ماں باپ کی بات ہو یا ٹیچرز کی, اور چھوٹے بچے نہیں, ہائی اسکول اور کالج کی بات ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے غلط سنا, کیونکہ میں نے تو یہ ویسٹ میں جملے سنے ہوئے تھے. یہاں بھی ذرا سیم آ گئے, کہنے لگے جی بچے آ کے यंग बच्चे टीनेजर बच्चे आके हमें माँ बाप के बारे में ऐसी रौनत से बात करके कहते हैं, क्या मेरे बाप को हक है कि मुझे रोके इस बात से कि मैं एक लड़की से मिलूं? क्या मेरी माँ को हक है कि वो मुझे फलां लड़के से मिलने से जाने से रोके? तो याद रखिए, जो देखेंगे, जो दिखाएंगे, जिनके नक्शे कदम पे जाएंगे, उधर ही फिर हमारी नस्लें भी जाएंगी। तो माँ बाप के साथ ताल्लुक जोड़ लीजिए। याद रखिए, इनकी कदर तब आएगी जब ये नहीं होंगे। ये वो नेमत है जिसकी बारे में आप कह सकते हैं कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। किसी मन चले ने तो ये किसी माशूका के लिए कहा होगा ना, आशिक के लिए कहा होगा, लेकिन माँ बाप पे ये बहुत फिट होता है। ज़िंदगी में इनकी बातें बोझल लगती हैं, कड़वी लगती हैं, परेशान होता है। अभी एक आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाऊँगी तो आप थोड़ा सा इससे भी अंदाज़ा करेंगे, लेकिन अपने लिए दुआ कीजिए, रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तीन दफ़ा दिल में अपने माँ बाप के लिए, चाहे ऊंची आवाज़ से कह दें, आपकी मर्ज़ी है, और एहसास कीजिए, महसूस कीजिए कि अगर पैदा होते ही वो आपको पकड़ कर ट्रैश बैग में डालकर फेंक आते, ईदी सेंटर के किसी कचरा बॉक्स में फेंक आते, तो क्या होता? और उनका ये हक था, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम माँ बाप को अपना हक समझते हैं, इसलिए फिर हम उनकी बातों पे कहते करना नहीं था। और एक बच्ची की बात शायद मैं हर साल ही सुनाती हूँ, कहती है ना करती पैदा, मैंने कब कहा था? इट वॉज़ योर चॉइस, इट वॉज़ योर फन। अब आप खुद ही समझ जाए, जब ज़ुबानें इतनी लंबी हो जाएं माँ बाप के आगे औलादों की कि ना करते पैदा, मैंने कोई कहा था मुझे पैदा करो, तो अब क्यों हक मांगते हो? तो फिर बताइए आप ऐसे बच्चों से क्या मांगेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के करीब औलादें इतनी नाफरमान होंगी कि बे औलाद को लोग रश्क से देखेंगे कि तेरी औलाद नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं औलाद है बुढ़ापे का सहारा। जाइए देखिए ज़रा घरों में, 10 घर जाकर ढूंढिए, माजरत के साथ कहूँगी मैं, पहले तो बेटियाँ रुख्सत होके जाती थी ना, तो कहते थे कोई नहीं बेटे हैं घर बने रहेंगे। आज बेटे बेटियाँ दोनों पहले ही चले जाते हैं पढ़ने के नाम पे, बूढ़े बुढ़ियाँ अकेले। और अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमें मौका ही ना मिला, अकेले मियाँ के साथ रहने का मज़ा मिला ही नहीं। और वाकई जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़न है कि मैं और मेरा मियाँ घर में कोई भी ना हो। गए थे तो ससुराल था, नंदे थी, देवर थी, फिर ये थे, फिर ये था, हम दोनों को इकट्ठे, हम तो कभी हनीमून पे भी नहीं गए, और गए तो साथ वहाँ भी नंद को साथ भेज दिया साज ने के ख्याल रखना ज़रा। तो मैं उनको कहती हूँ फिक्र ना करें, बुढ़ापे में आपका ये शौक़ पूरा हो जाएगा, दुआ करें बुढ़ापे में बुढ़ी बुढ़े सलामत रहें। असल प्यार और असल ज़रूरत शौहर को बीवी की और बीवी को शौहर की बुढ़ापे में होती है। जवानी में तो बीवियाँ भी बहुत ही मसरूफ़ होती हैं बच्चों की देखभाल में, और मर्द भी कहीं कैरियर बना रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कमा रहे हैं। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज़ है। बूढ़े माँ बाप को वक्त देना, उनके पास बैठना, उनसे उनकी जवानी की बातें करना, उनको बहुत प्यारा लगता है। आप आज जाकर अगर आपकी माँ या आपके जो भी बूढ़ों में नानी दादी में आप जाकर उनसे पूछें, सुनाएं जब मैं पैदा हुई थी तो क्या हुआ था, और नानी माँ आप बताएं आपकी शादी हुई थी तो आपने किस रंग के कपड़े पहने थे, ऐसे झींपेंगी, खुश हो जाएंगी। देखिए बस दफ़ा पैसे देकर या ख्याल रखकर या मासी नौकर रखकर हम कहते हैं ख्याल तो रख रहे हैं, तो अगर वो भी आपके लिए आया रख देते और नोटों में आपको तोलते रहते और आपको अपना लम्स और प्यार ना देते, तो बच्चे को पैसे नहीं चाहिए होते, बूढ़ों को भी पैसे नहीं चाहिए होते, उनको आप चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट घर में आते हुए, घर से जाते हुए अगर 5 मिनट बैठ के दुआ ले लेते हैं, दुआ देते हैं, आपका अच्छा दिन गुजरेगा। वो तो सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं कि आप कब आएँ, और आप आकर सीधे निकल गए तो रोएंगे नहीं और तड़पेंगे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, वल्लाही वो तो खाते भी कुछ नहीं, उनको आपसे कोई आपके बहुत मुर्ग मुसल्लम नहीं चाहिए। आप खाएं, आपके बच्चे खाएं, नसीब हो उनका। और इसमें मैं बहुओं को भी कहूँगी, इस उम्र तक पहुँचने में तो सास ससुर भी अपने माँ बाप बन ही चुके होते हैं, आज से उनको भी अपना माँ बाप समझें। उनका बुढ़ापा, उनकी दवाइयाँ, उनका हाई ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनके दिल का कमज़ोर होना, इस पर रहम कीजिए, और रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ मांगा करें, माँ बाप का हक है कि आप अपने माँ बाप के लिए ये दुआ मांगें। ये दुआएँ लगती हैं, और जितना दिल से मांगेंगे अल्लाह उनको उतना फ़ायदा देगा। अब एक सवाल रहता है कि आप तो करते हैं वो खुशी नहीं, اور یہ سوال اٹھتا ہے خاص طور پہ دین کے کام کرنے والوں کی طرف سے، وہ اولادیں جو نیک ہو جائیں اور ماں باپ ابھی گناہ پہ ہیں یا غلط چیزوں کی دعوت دیں، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے تقاضے اتنے نبھنے جانے مشکل ہو رہے ہیں، اب دل میں پیار ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ آپ گھر میں بھی ہوں تو بھی ان کو کوئی بہت فرق نہیں پڑتا اور وہ مطمئن ہے، اور میں جو کر رہی ہوں ان کو بھی تو فائدہ ہوگا، میں انہی کا تو صدقہ جاریہ ہوں، تو پھر کیا کیجئے؟ آپ کے لیے اگلی آیت میں جواب ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی، میرا باپ مجھ سے اس حال میں رخصت ہو گیا کہ وہ مجھ سے خفا تھا، ناراض تھا کسی بھی وجہ سے، اب کیا کروں؟ کہا تم اس کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، یعنی نہ بہت فضول خرچ ہو اور نہ بالکل کنجوس، کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا، اللہ کے نبی میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، زندگی میں تو احسان کے وہ 22 یا 25 مرحلے ہیں جو ہم نے پیچھے بھی میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا، وبالوالدین احسانہ میں لیکچر بھی ایک موجود ہے، ماں باپ میری جنت میری جہنم کچھ اس طرح، تو حقوق دنیا میں زندگی میں تو بہت سے ہیں، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا ان کے جنازے کی نماز پڑھو، بلکہ خود پڑھائیں، آج ایک چھوٹا سا کام تو کیجئے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ایک سوال کیجئے، بیٹیوں سے پوچھئے، آپ ماں ہیں اس لیے، اور آپ کے شوہر اپنے بچوں سے پوچھیں، جب میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی تو مجھے غسل کون دے گا، اور دوسرا سوال، میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور اگر آپ کی بیٹیاں آپ کو غسل دینے کے قابل نہیں ہیں تو بیکار ہے ان کی ماسٹرز کی ڈگریاں اور ان کے دنیا کے بڑے بڑے کام کرنا، اور سیم بات بیٹوں کے لیے باپ کے لیے، اور اگر بیٹا باپ کی یا ماں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر جو مرضی پڑھ لے یا پڑھا لے، جس درد اور تڑپ کے ساتھ وہ آپ کے لیے اس دن دعا کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا، جتنا ساک اتنا سیک، جتنا رشتہ ہوتا ہے نا اتنا پیار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بڑے ہی عزیز صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے اور رو رہے تھے، اتنا پیاری نماز پڑھائی کہ پیچھے ایک صحابی کھڑا دھاڑے مار کے رونے لگا، لوگ سمجھے کہ یہ مرنے والے پہ رو رہا ہے، کہا صبر کرو سب نے جانا ہے تم بھی جاؤ گے میں بھی، کہا میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ وہ چلا گیا، جانا تم سب نے، صحابہ موت کو بڑا ایزی لیتے تھے، اٹس اوکے وہاں ملیں گے، یقین تھا نا، ہم تو موت کے لفظ سے ڈپریس ہو جائیں، کہنے لگا اس کے لیے نہیں رو رہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور اللہ کا نبی یہ میرا جنازہ پڑھا رہے ہوتے۔ دعا اور استغفار کرنا، پھر ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو، کیونکہ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے بھی ہیں، ماں کی بہن ہے تو آپ کی خالہ ہے، باپ کا بھائی ہے تو آپ کا چچا ہے، لیکن آپ اپنے ناطے سے نہیں ماں باپ کے ناطے سے ان سے ملیے، یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس شعور کے ساتھ یہ دعا مانگا کرے، اور آپ کو میں یہ عمل چھوٹا سا بتا دوں، اگر آپ کرنا چاہیں اپنے لیے بھی دعا کریں نا تو ماں باپ کے ناطے سے کیا کریں، مثلا آپ کو کچھ چاہیے اور آپ کو پتا اگر وہ نعمت آپ کو مل گئی تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ ماں باپ کو گی، آپ کی اپنی نعمت سے زیادہ، یعنی آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، تو اللہ سے کہا کرے اللہ مجھے یہ نعمت دے دے تاکہ میرے ماں باپ خوش ہو جائیں، اور اس میں پھر آپ اپنے استادوں کو ڈالیں، अपने ससुराल को डालें। तीन माँ और तीन बाप होते हैं एक बंदे के, वो माँ बाप जो दुनिया में लाने का जरिया बने। हमारे कल्चर में तो रिजात है नहीं, वरना रिजाई माँ बाप का भी दर्जा। और फिर उस्ताद, माँ बाप आसमान से नीचे लाते हैं, उस्ताद नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं। और इसी तरह ससुराल, जिसके बाद आपका एक स्टेटस बन जाता है। उनसे पूछिए जिनकी शादियाँ नहीं होती, कितना बड़ा हम है उनके लिए। अबू दाऊद इब्ने माजा की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान माँ बाप के यतीम बच्चे को पाला और खिलाया पिलाया यहाँ तक कि वो बेन्यास हो गया, इसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब है। और जिसने किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद किया, अल्लाह इसे जहन्नुम से आज़ाद करेगा और इसका एक एक उज़्व जहन्नुम से आज़ाद होगा। और इसमें एक रिवायत में आता है, जिसने अपने माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को पा लिया फिर भी दोज़ख में गया, अल्लाह इसे अपनी रहमत से दूर करे। बददुआ है उसके लिए, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करें। फिर एहसान नहीं जतलाना वरना अजर ज़ाया हो जाएगा। गरीब रिश्तेदार, मिस्कीन और ज़रूरतमंद और मुसाफिर, इनकी मदद कीजिए और एहसान ना जताइए, बल्कि ये माल का वो हक है जो अल्लाह ने ख़ुद ही आपके मालों में इन लोगों का रखा है। नहीं करेंगे इनका ख्याल तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम होंगे। तो ये गोया कि हक की अदायगी है, कोई एहसान नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत है अबू हुरैरा से, आपने फरमाया, अल्लाह की राह में खर्च किया कर, अल्लाह तुझ पे खर्च करेगा। आपने फरमाया, हर सुबह दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक दुआ करता है कि अल्लाह सखी को बदला दे और दूसरा दुआ करता है बखील का माल तलब कर दे। सदके खैरात से किसी का माल नहीं घटता और हर सखावत करने वाले को अल्लाह इज्जत वाला बना देता है। और जो शख्स अल्लाह के हुक्म की वजह से दूसरों से आजिज़ाना बर्ताव करे, अल्लाह इसे बुलंद दर्जे का कर देता है। ये सारी खूबियाँ हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आज के दौर में अमूमन माँ बाप के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये एक तहरीर है, कुछ हिस्सा कोशिश करती हूँ आपको पढ़ के सुना दूँ। टॉपिक है खामोश दोस्त। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं, ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने माँ बाप का मवाजना भी शुरू कर देते हैं, इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, बचत की होती, कुछ हमारे लिए बनाया होता तो आज हम भी फलां की तरह आलीशान घर और गाड़ी में घूम रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर ना करना, इस जैसे फजूल लगते थे सवाल जवाब जो माँ बाप पूछते थे। स्वेटर तो पहना है ना, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा ही नहीं है। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मेयार पर परखती हैं, घर, गाड़ी, प्लॉट, बैंक बैलेंस, कारोबार और अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर खुद सुरखरू हो जाते हैं। हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूल में पढ़ते, कारोबार करते, वगैरह वगैरह। इसमें शक नहीं कि औलाद के लिए आइडियल भी इनका बाप ही होता है, लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि हमारे सामने वक्त की ज़रूरत होती है, दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जस्तजू में हम कुछ भी खो रहे होते हैं, जिसका एहसास बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला ज़िम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुजरता है कि इंसान पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखना शुरू कर देता है। जवानी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, औलाद, और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आ आकर बाप की हर सोच, फिक्र, एहसास, परेशानी, शर्मिंदगी और अज़ियत को हम पर खोल के रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बेवजह कहे लगाना, अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुरानों को फ़ख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फ़ख्र, कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, यानी कभी बग़ैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझा कर लेट जाना, नज़रें झुकाए नहायत महवियत से डूब कर कुरान की तिलावत करना, समझ तो आना शुरू हो जाता है, यानी कब जब अपने बच्चे आते हैं, लेकिन बहुत देर बाद जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहरों में गए बच्चों पर आयतुल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं। जब अपने बच्चे छोड़ के जाते हैं ना दूर, आप अकेले, आप कहते पता नहीं खाना भी खाया है कि नहीं, पता नहीं सर्दी में ना हो तो फिर अपने माँ बाप का वो वक्त याद आता है जो वो आपके लिए फ़िक्र करते थे। जब हम सर्दी में वज़ू करते हुए अचानक सोचते हैं, पूछ ही लें बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है? जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खुनक हवा बदन को छूती है तो पहला एहसास जो दिल दिमाग में हलचल सी मचाता है वो कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फ़िक्र, हज़ार ताने बाने जोड़ता बाप थक हार कर अल्लाह और इसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है, तब याद आता है हमारा बाप भी एक एक हरफ एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती खुशी बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं ही करता था। हर नमाज के बाद उठते कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आँखों से अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फिक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम उसे छूने महसूस करने और इसकी हर तलही और अजियत और फिक्र का इजाला करने से महरूम हो चुके होते हैं। यानी इनकी कदर कब आती है? जब ये होते नहीं हैं। ये एक अजीब एहसास है जो वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर बर वक्त यहाँ हो जाएं वही खुशकिस्मत औलादें हैं। हम वो औलादें हैं जिनको ज़िंदगी में माँ बाप की कदर आ गई, उनकी कदर कर लीजिए। औलाद होते हुए हम समझते हैं कि बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना ये तो बचपन की बातें हैं। बाप बनकर आंखें भीग जाती हैं, पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने को बाजू खोले होंगे। यानी जवान बच्चों को भी हक दिया करें। माँ बाप का दिल चाह रहा होता है जवान बच्चों के जिस्म को मस करना। बचपन में तो खूब प्यार लेते देते हैं, बड़े होकर देते नहीं, दूर दूर फिरते हैं, हेलो क्या ठीक है, चलो पैसे दे दो, चलो जाओ, खाया खाना खाए चले गए। उस वक्त माँ बाप का दिल कर रहा होता है कि आप उनके साथ लगें, मस करें उनको। प्यार के लिए इसके होंठ तड़पते होंगे और हमारी बेबाक जवानियों ने इसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे दरमियाने तबके के सफ़ेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दिला सके हों। ये एक छुपा मीठा मीठा दर्द है जो बाप अपने साथ ले जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ ना कर सकने की हलिश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है, और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं तो बाप के दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलाद अगर बाप के दिल में अपने लिए मोहब्बत को खुली आँखों से वक्त पर देख ले तो शायद इसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज़्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं होता। माएँ अक्सर अपने जज्बे दिखा भी देती हैं, सुना देती हैं, लेकिन आज के दौर में बड़ी मज़लूम हस्ती है बाप। साथ नहीं बैठते, डरे रहते हैं, पैसे दे दें, गाड़ी की चाबी दे दें, मोबाइल दिला दें, बस ये है बाप। मशीन बनकर कमाता है और दुनिया से चला जाता है। अपनी ज़िंदगी में शायद उससे 5,000 लेने भी मुश्किल लगें, और 5 करोड़ की जायदाद आपके नाम लगवा कर बाप कब्र में चला जाता। काश हमें इसका ज़िंदगी में एहसास हो जाए। अल्लाह अकबर, कहिए शऊर से रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्या सीखा? सब कुछ समझ आ रहा है क्या सीखा? दुआ कीजिए कि इस रुकू के एक एक लफ्ज़ पे अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। माँ बाप के साथ अच्छे रवैये और बेहतरीन सलूक करने हैं। रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के हकूक़ पूरे करने हैं। हाजतमंदों को नरमी से जवाब देना है। बुखल और फजूल खर्ची नहीं करनी, और अल्लाह के अहकामात की कितनी पाबंदी करती हूँ इस पे अपना हाल देखना है, और कभी माँ बाप पर चीखना नहीं। बुढ़ापे में उनसे शिकवे और शिकायतें नहीं करनी। अपने माजी के किस्से याद कर करके उनको रुलाना नहीं, उनको वक्त देना है, उनसे बातें सुननी और सुनानी है, और उनके लिए कसरत से दुआएं करनी है। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हमसे राज़ी कर दे। और फजूल खर्ची नहीं करनी। याद रखिए, आसाइश भी जायज़ है, आराइश भी जायज़ है, नुमाइश जायज़ नहीं। आज के दौर में क्यों गरीब गरीब है? क्योंकि हमारे पास आसाइश बहुत है, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्कों में तबकाती कशमकश कितनी है। गला हुआ फल कौन खाते हैं? और फ्रेश एक ही साइज़ का फल कौन खाता है? बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, मैं आपको नॉर्वे की गवाही दे सकती हूँ। अच्छी बात तो अच्छी है, चाहे किसी दुश्मन मुल्क की हो, एक दूध पीते हैं सब, एक ही स्टोर्स हैं, मेड्स भी वहीं से जाकर अपने लिए फ्रूट सब्जी दाल खरीदती हैं जहाँ से मास्टर्स और मिस्ट्रेसेस खरीदती हैं। तस्वुर नहीं है वहाँ कोई गली सली सब्जी फल केला खा सके। हर दिन स्टोर्स की वो इंस्पेक्शन करते हैं और जिसकी डेट एक्सपायर्ड है उसको पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, वो स्टोर्स में नहीं मिलता। यहाँ तो आप ज़रा गरीबों के बच्चों को देखें, अगर केला देते भी हैं तो खुदा के लिए ठीक दे दें। आपके घर में तो 10 केले पड़े हैं, आपने मासी को एक दिया, ढूंढ के दे रहे हैं किसको दाग लगा हुआ है वो दे दूँ, वो सेब देना है जिस बाइट से कीड़ा दिख रहा है, एक दे रहे हैं ना उसको, सबसे अच्छा सेब उसको दे दें। आप 10 में से अच्छा अच्छा हिस्सा निकालेंगे फिर भी 6 सेब आपके पास होंगे। याद रखिए इन गरीबों के मामले में अल्लाह से डरिए। आज के नौकर तबजीर की वजह से इंतकाम की आग में भड़क कर कई दफ़ा मालिकों को गोलियों से मार देते हैं। हम 100 रुपया मांगे तो आगे से आंखें खोलते हैं ये, और हमारे ही हाथों दर्जियों और ज्वेलर्स को कई के हज़ार के बिल भेजे जाते हैं। जितना किसी मुआशरे में पंप एंड शो होगा ना, उतना वहाँ गरीब और अमीर के बीच में नफरत होगी। तो फजूल खर्ची हर चीज़ की बुरी है। अल्लाह ताला हमें अपने माल को सही तरह इस्तेमाल करने वाला बना दे।